أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے جی. اگلے ٹرم، اگلا فریز جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کا اگلا فریز جو ہے وہ ہے مالک یوم الدین. تو آج کا سبجیکٹ جو ہمارا ہے انشاءاللہ، جو ہم نے سمجھنا ہے جس فریز کو، وہ ہے مالک یوم الدین. دیکھیں، جیسے ہی ہم ایک نعمت دیکھتے ہیں، ہم ایک آیت دیکھتے ہیں، قرآن آیات کی کتاب ہے نا، آیت کا کیا مطلب ہے؟ نشانی. تو جیسے ہی ہم ایک نعمت دیکھتے ہیں، ایک نشانی دیکھتے ہیں، اللہ کی ایک آیت دیکھتے ہیں، اور ابھی تک آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہے، جو آیات ہیں، جو سائنز ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو ہماری اپنی ذات ہے، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، وہ سب ڈائریکٹلی ایک ایسے خالق کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس خالق کو ہم اللہ کہتے ہیں. اور یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کا نام جو ہے وہ ایک تحیر، حیرت اور درماندگی پیدا کرنے والی ذات ہے، کہ جتنا آپ اس میں سوچتے چلے جاتے ہیں، جتنا آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو مزید حیرت کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہاں تک کہ انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی گہرائی میں جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہ جو ہمیں ایک تعارف حاصل ہوتا ہے، وہ جو ایک پہچان ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی قدرت میں اور اس کی نشانیوں میں غور کرنے سے، تو انسان بے اختیار ہو کے وہ یہی کہتا ہے الحمدللہ. جو پہلا لفظ ہے جس سے قرآن کھلتا ہے، جس سے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب جس سورت کا نام ہے، جس سے وہ کھلتی ہے، وہ ہے الحمدللہ. یعنی وہ فائنل تعریف، وہ فائنل ریکگنیشن، وہ فائنل پہچان جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہی خالق کل ہے. الحمدللہ، اور پھر ہم کہتے ہیں رب، یعنی وہ تھامنے والا، وہ پالنے والا، وہ پروردگار، وہ سسٹینر اور مینٹینر جو ہے، وہ ذات جس نے تربیت کی ہے اور کر رہا ہے اور پھر آخر تک پہنچا کے اس نے ختم کرنا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرنا ہے اور پھر حساب کتاب لینا ہے. تو وہ رب جو ہے، رب العالمین، اور یہ بھی ہم نے، یہ لفظ بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ عالمین میں اللہ تعالی، ہماری تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے، ایک چھوٹی سی کائنات ہے ہماری، جو ہم میں کر کے، ہم تو میں سے ہی نہیں نکل سکتے، باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچنا، اور پھر اس کائنات کے بارے میں تو سوچنا بہت بڑی بات ہے. تو مطلب ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی وسعت کا صرف اندازہ لگا لیں کہ العالمین جو ہے وہ زمان و مکان کی وہ مکمل وسعت ہے جس کے بارے میں ہم صرف سوچ بھی نہیں سکتے. جو انگلش میں کہتے ہیں نا، وی کین ناٹ ایون بگن ٹو کمپریہینڈ، کہ اس کی وسعت کیا ہے اور اس کے اندر امکانات جو ہیں، اس کے اندر جو پاسبلٹیز ہیں، ہم تو صرف ان کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. تو الحمدللہ ہے، اور کس کی وہ ریکگنیشن ہے؟ وہ اس رب کی ہے، وہ رب جس نے سب کچھ تھاما ہوا ہے، جو ہر چیز کو بنا کے اس کو کمال تک پہنچانے والا اور اس کا پھر خاتمہ کرنے والا اور اس کے بعد اس سے حساب لینے والی جو ذات ہے، رب العالمین، جو زمان و مکان کا رب ہے، ٹھیک ہے جی. پھر آیا، یعنی زمان و مکان کا جو رب ہے، ایک ایسی ذات جو کل خالق اور کل تربیت کرنے والی اور کل ربوبیت رکھنے والی ذات ہے، اس کے لیے سب سے بڑی صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس ذات نے اپنے میں وہ کون سی صفت رکھی ہے جو اس کے لیے یہ ربوبیت اور یہ الوہیت ممکن بناتی ہے. وہ جو اس کی صفت ہے وہ ہے رحمت, وہ اس کا رحم ہے. اور وہ بھی ہم نے الرحمن اور الرحیم پڑھتے ہوئے یہ الفاظ جو تھے ان کی روٹ ہم نے سیکھی کہ وہ رحم ہے, جو شکم مادر ہے یا ماں کی جو بچے دانی ہے اس کو رحم کہتے ہیں. اور اگر ہم نے اس دنیا میں ایک بے غرض محبت کی مثال دیکھنی ہے, یعنی جس کو انکنڈیشنل لو کہتے ہیں, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں نہیں پایا جاتا, تو وہ اگر ایک ہی مثال ہم نے دیکھنی ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے ہمارے لیے, وہ ماں کا رحم ہے جس میں بچہ پلتا ہے, بڑھتا ہے. وہ رحم اس کو اپنے خون سے سینچتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, اس کو پھر اس کو پیدا کرتا ہے. ایک جان کنی کی کیفیت سے گزر کے, موت اور زندگی کی کشمکش میں سے گزر کے وہ اس بچے کو پیدا کرتا ہے, اور پھر اس وہ ماں اسے پالتی ہے, حالانکہ اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو بے غرض محبت کی ایک مثال یہ رحم اور یہ شکم جو ماں کا ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ دیکھو مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے, ہاں میں تمہیں سینچ رہا ہوں, میں تمہیں پال رہا ہوں, میں تمہیں ڈیولپ کر رہا ہوں, میں تمہیں کمال تک پہنچا رہا ہوں, اور میں تم سے وہ مقصد حاصل کر کے رہوں گا جس کے لیے میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے. لیکن اس میں میرا اپنا کوئی, میری غرض نہیں ہے, میرا اپنا, میری شان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی تمہاری نافرمانی سے یا تمہاری اطاعت گزاری سے. تو الرحمن الرحیم کا معنی ہم نے سیکھا, اور اس کے بعد جو ٹرم آئی, جو فریز آ رہا ہے, وہ ہے مالک یوم الدین. تو سب سے پہلے تو مالک کا لفظ ہم سیکھتے ہیں, اور اس لفظ کی کیا امپلیکیشنز ہیں, اور یہ کس قدر ایک اہم تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا دے رہا ہے. بالکل قرآن کے شروع میں, قرآن کے چوتھے فریز میں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اور چوتھا فریز جو ہے, چوتھی بات جو اللہ کر رہا ہے قرآن کے کھلتے ہی, وہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں. تو ملک جو ہے, یا ملکیت جس کو ہم کہتے ہیں, میم لام کاف, ٹھیک ہے جی, یہاں سے نکلا ہے یہ. ملک صاحب ہم کہتے ہیں, مالک ہم, یہ اس چیز کا مالک ہے. دنیاوی ٹرمز میں آپ سوچیں, جو ہم انسانی ٹرمز میں جیسے مالک کو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ سوچیں. اگر ہماری ملکیت کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کے مالک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ ہے کہ جس چیز کی ملکیت ہوتی ہے ہم اس کو اپنے کنٹرول میں سمجھتے ہیں, بھائی یہ میرا کمرہ ہے, یہ میری کرسی ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرے چپل ہیں, میرے جوتے ہیں, میرے ہیں نا. تو ایک تو یہ ہے کہ جس کو ہم انگلش میں اونرشپ کہتے ہیں, کہ میں اس چیز کا بلا شرکت غیر مالک ہوں, جو حصہ میرا ہے. ہو سکتا ہے ایک گھر میں شریک ہوں, لیکن جو حصہ میرے لیے لکھا گیا ہے یا جو میری ملکیت ہے اس کا میں اونر ہوں. تو اونرشپ آ گئی اس میں, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس میں آتی ہے مالک کے معنی میں اور اس کے مادے میں, وہ ہے اتھارٹی. اب جب یہ میرا کمرہ ہے تو اس میں جو میری مرضی ہے میں کروں گا, میری اتھارٹی ہے نا. اور اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے تم نے ناک کرنا ہے, تم نے دروازے پہ دستک دینی ہے, اندر نہیں آنا, یہ میرا کمرہ ہے, یہ میری پرائیویٹ پراپرٹی ہے, تو اس کے اندر آنے سے پہلے تم نے اجازت مانگنی ہے. یہ میری اتھارٹی ہے, میں اندر سے دروازہ بند کر دوں گا, میں کنڈی لگا دوں گا, تو یہ میری اتھارٹی ہے, یہ میری ثوابدید پر ہے کہ اس کمرے میں میں تمہیں کچھ کام کرنے کی اجازت دوں یا نہ دوں, یا اس کمرے میں تمہیں آنے کی بھی میں اجازت دوں یا نہ دوں. تو ایک تو اونرشپ ہو گیا, دوسرا ہو گیا اتھارٹی. اب یہ اتھارٹی جو میرے پاس ہے اس کمرے میں, اگر میں اس کمرے میں غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کروں, اگر میں اس کمرے کو آگ لگا دوں, اگر میں اس کمرے میں ایک بم پھاڑ دوں, کچھ بھی کر سکتا ہوں میں, کیونکہ میری اتھارٹی ہے نا. لیکن چونکہ میں اس کمرے کا مالک ہوں, چونکہ میری اونرشپ ہے, تو نہ صرف اتھارٹی میری ہے بلکہ ذمہ داری بھی میری ہے. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है कि मैंने इस कमरे का ध्यान रखना है, मैंने इसे साफ़ सुथरा रखना है, मैंने इसको इसकी मुरम्मत करते रहना है, इसमें तोड़ फोड़ नहीं करने देनी किसी को, ना ख़ुद इसमें कोई चीज़ तोड़नी है, मैंने इसको अच्छी तरह रखना है। अगर मैं इसको अच्छी तरह नहीं रखूँगा, अगर मैं जैसे इस कमरे में चूहे पैदा हो गए और मैं वो चूहों को मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस वो पैदा होते गए और वो बढ़ते गए बढ़ते गए, एक दिन ये कमरा चूहों से इतना भर जाएगा कि शायद मुझे ये कमरा छोड़ना पड़े, या इस कमरे में मेरा जितना सामान पड़ा है शायद वो चूहे उसे तबाह कर दें। तो ना सिर्फ मैं इस कमरे का मालिक हूँ, मेरी ओनरशिप है और मेरी ही अथॉरिटी है, और उस ओनरशिप के ज़रिए और उसकी वजह से मैं इस कमरे के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। ठीक है जी, तो ओनरशिप आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आ गई, और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं इस कमरे का बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं इसे साफ़ सुथरा रखती हूँ, अच्छी तरह सजा के रखती हूँ, आरामदेह बना के रखती हूँ, ताकि मैं इस कमरे में खुश खुश रह सकूँ, आराम से रह सकूँ, इस कमरे का जो मकसद है वो मैं हासिल कर सकूँ। ये जो मेरे सर पे छत है मैं इसे मेंटेन रख सकूं। कितने सारे अल्फाज आ गए ना एक में, ओनरशिप है, मिल्कियत है, फिर अथॉरिटी है, मेरी मर्जी है, मेरी सवाबदीद है, लेकिन उस अथॉरिटी को बैलेंस करने के लिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी की वजह से मैं इस कमरे का केयर टेकर हूँ, मैं इस कमरे का पासबान हूँ, निगहबान हूँ, इस कमरे का चौकीदार हूँ, इस कमरे का मुहाफिज हूँ, क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है जी, ये सारी बातें जो हैं ये मालिक के मादे में शामिल हैं। वो अल्लाह जो है, जो ओनर है जी, जो मालिक है, उसका मुकम्मल कंट्रोल है, उसके कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है, उसकी मुकम्मल अथॉरिटी है। वो जब्बार है, वो कहार है, वो कादिर है, कुदरत रखने वाला है। ये सब मालिक में, ये अल्फाज जो हैं जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये मालिक की जो रूट है माला का, ये उसमें शामिल है। ठीक है जी, और इस अथॉरिटी के साथ मेरी जिम्मेदारी है, या अल्लाह ने अपने ऊपर क्या चीज़ फ़र्ज की हुई है, ये हमने पढ़ा था रहमत पढ़ते हुए, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, उसने तो अपनी ज़ात के ऊपर रहमत फ़र्ज की हुई है, आयद की हुई है, उसने अपने लिए लिखी हुई है रहमत, तो वो तुमसे रहमत का मामला करेगा। तो उस रहमत की वजह से अथॉरिटी के साथ साथ वो ज़िम्मेदार भी है, उसने मुकम्मल ज़िम्मेदारी ली हुई है, उसी पे तवक्कल करना है, उसी के सहारे आगे बढ़ना है। ये वो मालिक है जिसने हमारी मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और रहमत का वादा किया हुआ है, मालिक। ठीक है जी, और वो हमारी केयर करता है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारा वाली है, वो हमारा वारिस है। मालिक जो है ये वो मामूली लफ्ज़ नहीं है, जब आप मालिक कहें तो आप मिल्कियत के बारे में सोचें। और इससे अगला जो फ्रेज़ है उसी में अल्लाह ने यह समझा दिया है कि तुम तो अपने कमरे के बारे में सोच रहे हो ना, और अपनी जायदाद के बारे में, और अपनी दुनिया के बारे में, और अपनी वो चीज़ें जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं तुम उनके बारे में सोच रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तो मालिक यौम दीन हूँ। यौम एक दिन, ठीक है जी, एक इकाई को, एक दिन को अरबी में यौम कहते हैं, और इसकी जमा है अय्याम। ये जो हमारा 24 घंटे का दिन और रात का एक सेट होता है इसको अरबी में यौम कहते हैं। ठीक है, और आगे है अद्दीन। दीन का क्या मतलब है, लोवी मतलब दीन का, दैन, जिसको दैन कर्ज को कहते हैं। ठीक है जी, आयत दैन आएगी इंशाल्लाह अलबकरा में, हम पढ़ेंगे। तो दैन जो है या दीन का मतलब है बदला। तो ये उस दिन का मालिक है जिस दिन बदले दिए जाएंगे। दीन हम अपने दीन को भी कहते हैं ना, दीन इसका मतलब है तरीका, ठीक है, लेकिन दीन की जो रूट है उसका मतलब है बदला। तो ये मालिक सिर्फ इन चीज़ों का नहीं है जो तुम अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, इसकी मिल्कियत का अंदाज़ा लगाने के लिए तुम्हें वो ये बता रहा है कि मैं तो उस दिन का मालिक हूँ जिस दिन बदले दिए जाएंगे, वो दिन जो आने वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ज़रा छोटी सी डाइग्रेशन मैं लेती हूँ कि कुरान के चौथे ही फ्रेज़ में अल्लाह ताला क्यों बता रहा है कि मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ। देखें, कामयाबी के उसूल जहाँ पढ़ाए जाते हैं, अब ये अपने डेल कार्नेगी साहब हैं, बड़े बड़े गुरु आए हैं इस दुनिया में जिन्होंने कामयाबी के उसूल पढ़ाए हैं, उन्हीं में से बड़े एक मशहूर उस्ताद जो हैं वो हैं स्टीफन कवी। और आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, आपको पता होगा कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल ये मैं पढ़ाती हूँ, और ये उन्होंने इंडिविजुअल से ले कर, यानी अपनी ज़ात से ले कर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस की और कंपनियों की कामयाबी के गुर उन्होंने बताए हैं। और उन गुरों में से एक जो बड़ा मेन एक उसूल है वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अपना काम जब आप शुरू करें तो आपके जहन में वो मकसद हो और वो एंड हो जहाँ तक आप उस काम को पहुँचाना चाहते हैं, आप इस काम से हासिल क्या करना चाहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और जिन लोगों को ये मालूम होता है वो फिर काम भी लगन से करते हैं और उनकी कामयाबी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो यानी ये तो एक इंसानी बात मैं आपको बता रही हूँ, एक आम रेफरेंस दे रही हूँ आपको कि स्टीवन कवी जो बहुत बड़े गुरु हैं सक्सेस लिटरेचर के, उनका एक गोल्डन उसूल है, यानी कि हज़ारों मकाले और किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने 7 उसूल बनाए जिनमें से एक मेन उसूल ये है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। बात जब आप शुरू करें तो आपको उसका एंड नज़र आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और आप क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं, आपका एम क्या है। ठीक है जी, तो ये तो यानी ये तो एक इंसान ने ये बात थोड़ा बहुत पढ़ के और सोच के ये बना ली कि जब तक आपको एंड नहीं पता होगा आप कामयाब हो ही नहीं सकते। जब आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप जाएंगे कहाँ, जितने भी नक्शे आपके पास हो, पूरे शहर का नक्शा आपके सामने खुला हुआ हो, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है आपको उस नक्शे का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही मिसाल हमारी जिंदगी की है, यही मिसाल हमारी चॉइसेस की है और यही मिसाल हमारी सारी एग्जिस्टेंस की है। हमारे पास कुरान है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कामयाबी के उसूल क्या हैं, जिसने हमें साफ साफ ये समझा दिया है कि जिस अल्लाह के सामने हाजिर होके हिसाब देना है वो अल्लाह हमसे क्या चाहता है। हम में से कितने लोगों को ये पता है कि वो उसूल क्या हैं और वो उसूल कैसे हासिल करने हैं और वो कितने आसानी से और कितनी सफाई से एक्सप्लेन किए गए हैं इस कुरान में। तो मालिक यौमिद्दीन कहने से अल्लाह ताला हमें ये रिमाइंड करा रहा है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे इर्गिर्द जो कुछ है इसका मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस पूरी कायनात का मालिक नहीं हूँ, मैं इस कायनात जैसी करोड़ों और कायनातों का, जिसको तुम मल्टीवर्स कहते हो और तुम पढ़ भी चुके हो फिजिक्स में भी तुम्हें पता चल गया है कि ये एक कायनात नहीं है, मैं उन सब का भी मालिक सिर्फ उनका नहीं हूँ। तुम जब ख़त्म हो जाओगे, ये कायनात जब ख़त्म हो जाएगी, ये सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक नई कहानी शुरू होगी और उसमें भी तुम आओगे, उस अबदी ज़िंदगी से भी तुम मिलोगे, तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तुम मट्टी में नहीं मिल रहे हो, तुम वापस मेरे पास आओगे और उस दिन मैं तुम्हें बराबर का बदला दूंगा, क्योंकि वो बदलों का दिन है। यहाँ से अल्लाह ताला ये कहता है। कितनी मर्तबा जब हम नमाज में मालिक यौमिद्दीन कहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये वो बदलों का दिन है, आज जो हमने दिन में जो कुछ किया है ना, जो कुछ हमने घोला है और जो कुछ हमने बोला है और जो कुछ हमने सोचा है इसका हमें हिसाब देना है। ये है कुरान को अपनी तरजीह बनाना, ये है वो सिचुएशन और वो मेंटल स्टेट जिसमें आप दाखिल होते हैं जब आप कुरान के अल्फाज को अपनी तरजीह बनाते हैं, कि हर दफ़ा मालिक यौमिद्दीन कहते हुए आप उस दिन का सोचते हैं जिसके बारे में कुरान में ये है कि ये दिन 50,000 साल लंबा है, कुरान में ही है। अब ज़रा सोचें या तो अरबी में जब मुबालगे की बात होती है तो 70,000 और 50,000 कहा जाता है, यानी कि तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना लंबा दिन है। तो ये 50,000 साल का दिन है, ये एक दिन जो है तुम्हारे, ये 24 घंटे के दिन अगर सारे मिला दो तो ये 50,000 साल चाहिए होंगे वो एक दिन बनाने के लिए। ये मतलब हो सकता है इसका, इसका या यानी वो इतना लंबा दिन है कि जैसे 50,000 साल, या वो एक्चुअली 50,000 साल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। जमानो मकान का रब जो है, जिसने ये दिन बनाया है, जिसने एक एक सेकेंड और एक एक लम्हा बनाया हुआ है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि एक दिन वो 50,000 साल का कर दे। और जरा सोचें, जब सारी वो मखलूक जो बा इरादा है, खलकतल जिन्न वल इंसा, मैंने बनाए हैं जिन और इंसान, वमा खलकतल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मगर ये कि वो मेरी इबादत करें, वो मेरी फरमान बरदारी करें। तो जिन और इंस तो आ गए, वो तो इस थपेड़े में आ गए कि ये तो बाइरादा मखलूक है, ये अल्लाह ताला की फरमान बरदारी पर मामूर है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने ये मादा भी रखा है कि ये नाफरमानी करे, ये फरमान बरदार ना रहे। ये जो मखलूकें हैं, ये जिन और इंस, इन्होंने अल्लाह के सामने हाजिर होना है और यौम दीन में इन्होंने अपना मामला अल्लाह के साथ साफ करना है। इनसे पूछ होगी, इनकी नियतों से लेकर उस पे अमल करना, और उस अमल के जो रिजल्ट्स होते हैं और जो नताइज होते हैं, और उससे जो और लोग अफेक्ट होते हैं, उससे जो अल्लाह की खलकत अफेक्ट होती है, उस सब का हिसाब इन्होंने उस एक दिन में देना है जिसको कुरान ने यहाँ यौम-ए-दीन कहा है। अब कुरान के उसूलों में मैंने आपको बताया था जो उसूल थे कि उसमें माद है, आखरत है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, अल्लाह के वादे जो हैं बुरे लोगों के लिए भी और अच्छे लोगों के लिए भी, और इस दुनिया के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में जो अल्लाह के इरादे हैं और अल्लाह के वादे हैं वो माद में बयान किया गया है। यहाँ मैं उसकी तफसील अगर शुरू मैंने कर दी तो फिर तो मैं 2 दिन भी बोलती रहूँ तो वो सारे रेफरेंसेस मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये कुरान का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन जिस सूरत से कुरान शुरू हो रहा है और जो इसका आप समझें कि मुकदमा है कुरान का, जो प्रेफेस है, और जो फातिहतुल किताब जो सूरत है उसमें अल्लाह ने हमें आइडिया दे दिया है कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मैं इस कायनात का मालिक हूँ, ना, मैं अबद आबाद अबदियत का मालिक हूँ। एक ऐसे वक्त का मैं मालिक हूँ जब वक्त ख़त्म हो जाएगा, जब दिन और रात नहीं रहेंगे, जब मौत ख़त्म हो जाएगी, जब एक इटर्निटी का सिस्टम होगा, एक हमेशगी होगी, तुम अबद में दाखिल हो जाओगे, एक अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाओगे। कुरान में है ना कि जब इन्हें जहन्नम में डाला जाता है तो ये मौत को पुकारते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, ये सूरह फुरकान में है, और फिर फरिश्ते उनको कहेंगे कि अब एक मौत को नहीं, अब कई मौतों को पुकारो, यानी कि अब तो मौत नहीं है, अब तो मौत ख़त्म हो चुकी है। हदीस से भी हमें पता है, वो सारी डिटेल मैं यहाँ नहीं बता रही आपको क्योंकि यहाँ पे हम यौम-ए-दीन की बात कर रहे हैं, द जजमेंट डे जिसको कहते हैं, द डूम्स डे जिसको कहते हैं, द फाइनल डे, द एंड ऑफ टाइम्स, इतने ज़्यादा नाम है इस चीज़ के। तौरात में इसका बयान है, बाइबल में इसका बयान है, और सबसे बढ़ के इसका जो बयान है वो साइंस में और फिजिक्स में इसका बयान है। तो हम तो मतलब कि अगर इस बात का कोई इनकार करे, और क़यामत का इनकार जो मुशरिकीन मक्का थे सबसे ज़्यादा वो इस बात का इनकार करते थे, अल्लाह को वो जानते थे, अल्लाह है, ये जो सारे हमने देवी देवता और बुत रखे हुए हैं ना, इनके ऊपर एक अल्लाह है, वो उस अल्लाह को मानते थे, ये खाना काबा अल्लाह का घर है ये भी वो मानते थे। उनको ये भी पता था कि खाना काबा की तामीर जो है वो हराम पैसे से नहीं करनी है, कहब्बा गरी और गंदे पैसे से और लूटे हुए माल से और चोरी किए हुए माल से और करप्शन से और लोगों के हक मार के जो माल उन्होंने जमा किए हुए होते थे वो नहीं लगाते थे खाना काबा की तामीर पे। इसका मतलब है कि उनको उस अल्लाह की ज़ात और उस अल्लाह की हुरमत का अंदाज़ा था। है, हम तो कहते हैं ना मुशरिकीन मक्का, अभी आपको पता चलेगा जब हम तौहीद साथ साथ पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि मुशरिक असल में कौन है। तो वो तो अल्लाह को बड़ा अच्छी तरह जानते थे और अल्लाह के काम में वो हराम पैसा भी नहीं खर्च करते थे। ये जो खाना काबा में, खाना काबा का जो स्ट्रक्चर है डब्बे जैसा है ना, एक क्यूब है और बाहर एक हिस्सा है डी शेप का जिसको हम हतीम कहते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री पता है कि ये क्यों हतीम रह गया, इसकी छत क्यों नहीं बनी? क्योंकि खाना काबा की जो तामीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सॉरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में, इनकी यानी नौजवानी में जो तामीर हुई थी, जबकि आप अभी बेसत नहीं हुई थी, आपको अभी वही नहीं मिली थी, लेकिन आप वहाँ रहते थे और सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे आप, और लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उस ज़माने में कुरैश मक्का ने खाना काबा को रिकन्स्ट्रक्ट किया था, दोबारा से इसकी तामीर की थी, एक रेनोवेशन की थी इसकी। और इन्होंने यही, इन्होंने कहा सारे सरदार जो हैं, ये अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े सरदार, अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा थे, ताया थे, कि सब अपनी हलाल पैसा ला के रखें ताकि उसमें इसकी तामीर की जाए, गंदा पैसा ला के नहीं रखना, किसी ने गंदा पैसा इसमें नहीं डालना, क्योंकि वो जो अल्लाह है, जो सब इलाहों का अल्लाह है, वो नाराज़ हो जाएगा। और फिर उन्होंने तामीर की और इसको उठाया और इसकी छत बनाई, और ये जो क्यूब का स्ट्रक्चर, ये डब्बे जैसा स्ट्रक्चर जो हम आज देखते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जो कुरैश ने बनाया था। ये हतीम की दीवारें इन्होंने, ये भी खाना काबा का हिस्सा था, इसकी दीवारें उन्होंने उठानी शुरू की, लेकिन जितनी दीवारें आज तक बनी हुई हैं इतनी ही बन सकी और वो पैसा ख़त्म हो गया। जब वो पैसा ख़त्म हो गया तो इन्होंने, जाहिर है हराम पैसा तो नहीं लगाना था उस पर, तो ये हतीम जो था ये खुला रह गया। और अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मेहरबानी है और कमाल रहमत है कि हम जैसे लोग जो ना बादशाह हैं और ना प्राइम मिनिस्टर हैं और ना जनरल्स हैं, हमें भी खाना काबा के अंदर खड़े होके नमाज पढ़ने का एक मौका अल्लाह ने दे दिया कि हतीम जो था ये इनकम्प्लीट रह गया और खाना काबा का गोया एक अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए खुला रह गया। तो इस कहानी से ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह को तो वो मानते थे, वो मुशरिक भी अल्लाह को मानते थे, यहूद भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, सब मानते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया उनका अकीदा अल्लाह के बारे में। फिर रिसालत, रिसालत भी वो मानते थे, वो मुशरिक भी मानते थे कि भाई मूसा भी पैगंबर है और इब्राहिम तो वो तो पूरी दुनिया का अलैहिस्सलाम, वो उसको तो हर कोई के ये पैगंबर था। और खाना काबा को जो मानते थे मुशरिक, जाहिर है उनको पता था कि ये तो हज़रत इब्राहिम ने बनाया है, और उससे पहले एक नबी था, एक पैगंबर था जिसका नाम नूह था, जिसके ज़माने में तूफ़ान आया था, ये भी इनको पता था। तो रिसालत भी ये मानते थे, ये कुरान के उसूल है ना, तौहीद मान गए ये, रिसालत मान गए ये। अब आगे जो है वो जहाद है, तो जहाद जो है ये बड़े जंगजू थे, बड़ी बड़ी जंगें करते थे, अपने अपने भाइयों के और अपने ख़ानदान की इज्जत के नाम पे कुर्बान होने वाले लोग थे ये, तो ये जंगें भी इन्हें करनी आती थी, ठीक है जी। बुरे भले की तमीज़ भी इनको थी, बुरी चीज़ नहीं करनी, अच्छा काम करना है, ये भी जहाद है, ठीक है जी। जो चीज़ ये नहीं मानते थे वो माद था, वो ये वादा था कि मर के तुम दोबारा जिंदा होगे और फिर तुमने हिसाब देना है, ये इसका मजाक उड़ाते थे, इसको ये कहते थे ये नहीं हो सकता। अब भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर भी हो सकता है, लेकिन ये जो बातें, ये जो ये बात करता है ना, और ये कहता है कि ये मेरा काला हबशी जो गुलाम है और वो जो मेरी लौंडी है वो हबशन, वो मेरे साथ एक ही मैदान में खड़ी हुई होगी और मेरा हिसाब उसके साथ होगा और हम दोनों बराबर होंगे और वहां पे एक अल्लाह आएगा और वो हमसे हमारा पूछेगा और वो हम सरदारों से पूछेगा कि तुमने ये क्यों किया था और तुमने गुलाम को क्यों मारा था और तुमने झूठ क्यों बोला था और तुमने फलाने का हक क्यों मारा था, ये नहीं हो सकता। इनकार वो जो करते थे वो यौम-ए-दीन का, माद का इनकार करते थे। और हमें अपने हर अमल का जायज़ा लेना चाहिए, अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, जहाद के भी दावे करते हैं, ये जी कुरान पढ़ा रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को रोक रहे हैं हराम करने से, लेकिन हमारे अमाल में कितनी ये बात झलकती है कि हर काम करने से पहले क्या हम ये सोचते हैं कि इसका जवाब देना है। ये वो सवाल है जो अंग्रेज भी पूछते पूछते हमें बता गए, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हर काम शुरू करने से पहले सोचो जा कहाँ रहे हो, मकसद क्या है, ठीक है जी। तो ये जो एक चीज है कि बराबर बदला मिलेगा, द डे ऑफ इक्वल रिटर्न्स, तो ये एक ऐसा दिन है जिसमें हर रूह को اور ہر با ارادہ مخلوق کو اس کے برابر بدلے ملیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم ایک نئی ایگزسٹنس میں جاگیں گے جو ابد آباد تک ہے، جس کی پھر جو اٹرنیٹی ہے. قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں نا، چھوٹی قیمت پر بیچ دیا، چھوٹی قیمت حاصل کر لی اللہ کی نافرمانی کر کے. تو چھوٹی قیمت دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کوہ نور کا ہیرا بھی دے دے اس دنیا میں، اگر آپ کو کوئی پوری دنیا میں جتنے ڈالر ہیں وہ سارے دے دے، تو ختم تو ہو جانا ہے نا دنیا میں، اس دنیا کے مقابلے میں جس نے کبھی نہیں ختم ہونا. وہ آخرت جو ہم فیس کر رہے ہیں اس دنیا میں، جس نے کبھی نہیں ختم ہونا، اس میں جو رزلٹ ملے گا، دائیں چلے گئے یا بائیں چلے گئے، بس چلے گئے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، پھر وہیں رہنا ہے. تو کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کتنا ہمارے اعمال میں یہ بات جھلکتی ہے؟ یہ ہے یوم الدین کی تشریح، مالک یوم الدین. ایک چھوٹی سی بات مالک کے بارے میں، کہ مالک جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، جس کی جو مالک ہے بلا شرکت غیر اونر ہے، اور اتھارٹی اس کی ہے اور رسپانسبلٹی اس کی ہے، اور کیئر بھی وہ کر رہا ہے. آپ ذرا سوچیں اس کا جو ہم سے تعلق ہے، جیسے ایک مالک اور غلام کا ہوتا ہے. دنیا میں ہمارے نوکر ہیں نا، تو اس نوکر کے بارے میں آپ ایک چھوٹی سی بات سوچیں، کہ آپ اپنے نوکر کو کہیں کہ جاؤ بیٹا ذرا مجھے پانی لا دو، اور یا تو نوکر کو آپ کی بات نہ سمجھ آئے، اس کو آپ کی زبان نہ سمجھ آئے، وہ آگے سے کسی اور زبان میں بات کرے اور کہے کہ مجھے آپ کی زبان نہیں آتی، برائے مہربانی میری زبان میں بات کریں. کیا کیا سلوک کریں گے آپ اس نوکر کے ساتھ؟ کیسا چانٹا ماریں گے آپ اس کو؟ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو کہے کہ ہاں آپ کی بات تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن میرے خیال میں پانی سے زیادہ اچھی چیز روح افزا ہے، لیں آپ روح افزا لے لیں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. تو مالک ہونے کے ناطے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ذرا سوچیں، اگر قرآن ہماری ترجیح ہو تو کیا ہم کبھی یہ کہیں گے کہ جس مالک نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے اس کی زبان ہمیں نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر قرآن ہماری ترجیح ہو تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات زیادہ بہتر ہے، میرا نفس جو کہہ رہا ہے، میرا دل جو کہہ رہا ہے، میرا دل جو کرنے کو چاہ رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. مالک کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. ذرا اس بات کو سوچئے گا. دو سوال میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں قرآن کو اپنی ترجیح بنانے کے لیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ مالک ہونے کے ناطے اپنے غلام کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، اور اس سے جو آپ کی توقعات ہیں، کیا آپ اپنے مالک کی وہ توقعات پوری کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو یوم الدین کا پتہ چل گیا ہے، آپ تو ہر نماز میں کھڑے ہو کے مالک کے یوم الدین ہم سب کہتے ہیں، لیکن جب ہم یوم الدین کہتے ہیں تو کیا ہمارا ایک بال یہ سوچتا ہے کہ یہ قرآن جس کو ہم اپنی ترجیح بنانے جا رہے ہیں، اس قرآن کا ایک چوتھائی سے زیادہ حصہ اس قیامت اور اس حساب کتاب اور اس جہنم اور جنت کی تفصیل پر مبنی ہے، جس کے بارے میں ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے؟ تو بہت پیار اور دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.